नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 3-4 वर्षों में 8 करोड़ रोजगार सृजित होने से बेरोजगारी के मुद्दे पर दुष्प्रचार करने वालों को करारा जवाब मिला। राज्य में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसिलिंग 1 अगस्त से शुरू होगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, पश्चिम चंपारण, सीवान, रोहतास और समस्तीपुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई। और भारत ने चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से पराजित कर सीरीज में अजेय बढ़त प्राप्त की। श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 3-4 वर्षों में 8 करोड़ रोजगार सृजित किए गए हैं, जिससे बेरोजगारी के बारे में दुष्प्रचार करने वालों को करारा जवाब मिला है। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देश में कौशल विकास और रोजगार की आवश्यकता है और केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि दुष्प्रचार करने वाली ताकतें निवेश, बुनियादी ढांचा विकास और देश की आर्थिक प्रगति की शत्रु हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मीडिया को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने में सहयोग करना चाहिए। मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम पहल की दुनिया भर में सराहना की गई है। उन्होंने कहा कि मीडिया इसे जन आंदोलन बनाने में सहयोगी हो सकता है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए अगले 25 वर्षों की यात्रा में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया लोगों को उनकी ताकत के बारे में जागरूक करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मीडिया घरानों को दुनिया की दूसरी भाषाओं में भी अपना संस्करण पेश कर भारतीय परिप्रेक्ष्य को वैश्विक स्तर पर ले जाना चाहिए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने खाद्य और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों के साथ गोलमेज वार्ता की अध्यक्षता करते हुए कंपनियों को वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन 19 से 22 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। इस वार्ता में आगामी वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए भारत में कंपनियों की भविष्य की योजनाओं और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ साझेदारी की संभावनाओं पर भी मंत्री ने विचार विमर्श किया। राज्य में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसिलिंग 1 अगस्त से शुरू होगी। शिक्षा विभाग के अनुसार सक्षमता परीक्षा में 1,87,000 नियोजित शिक्षक सफल हुए हैं, जिन्हें जिला आवंटित कर दिया गया है। सफल नियोजित शिक्षकों की काउंसिलिंग आवंटित जिलों में होगी। राज्य में मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी करने के आरोप में 28 प्रधानाध्यापकों पर अनुशासनिक और आर्थिक दंड लगाने की कार्रवाई की जा रही है। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बताया कि भोजन योजना से संबंधित 573 शिकायतें मिली थी, जिनकी जांच में 67 आरोप सही पाए गए। इसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के प्रत्येक पंचायत में खेल क्लब और मैदान की स्थापना की जाएगी। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित खेल क्लबों की स्थापना और संचालन पर हुई बैठक में कहा कि जिस पंचायत के पास भूमि उपलब्ध नहीं होगी, उस पंचायत में भूमि अधिग्रहण कर मैदान का निर्माण कराया जाएगा। खेल मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति नीति की उत्कर्ष योजना के तहत 25 लाख रुपए वार्षिक और राष्ट्रीय पदक पाने वाले को सक्षम योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस मौके पर खेल मंत्री ने खेल छात्रवृत्ति योजना के पोर्टल का शुभारंभ भी किया। श्री मेहता ने कहा कि राज्य के 9 प्रमंडलों में मल्टीपर्पज स्टेडियम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 29 अगस्त को राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी और राज्य खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में अवैध रूप से चलने वाली बसों की जांच के लिए अभियान चलाया गया। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि इस दौरान अनियमित रूप से चलाई जा रही 252 बसों से 47,87,000 रूपये जुर्माने की राशि वसूल की गयी। जबकि 26 बसों को जब्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि फिटनेस फेल होने के बाद भी अगर बस चलाई जाएंगी तो इसके लिए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटर यान निरीक्षण अधिकारी जिम्मेदार होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। खगड़िया जिले की डीआईयू और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 50,000 का इनामी सूर्य प्रताप सिंह उर्फ निशान सिंह को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है। महेशखूट थाने में दर्ज हत्या का प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट जैसे कुल 18 गंभीर मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। वहीं पटना जिले के नदी थाना क्षेत्र की पुलिस ने जेटली हत्याकांड मामले में फरार 50,000 रूपये के इनामी अपराधी राम प्रवेश यादव को दीघा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता के कारण बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद और समस्तीपुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किशनगंज, अररिया, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद एवं समस्तीपुर में तथा अगले 48 घंटों में किशनगंज, पश्चिम चंपारण, अररिया एवं सुपौल के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात प्रदेश के दक्षिण भाग एवं उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर होने का पूर्वानुमान है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के सिकटा में सबसे अधिक 140.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं बेगूसराय जिले के दो अलग अलग स्थानों पर वज्रपात की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। पश्चिम चंपारण जिले का योगापट्टी प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले में भी गंडक नदी तबाही मचा रही है। इधर सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दरभंगा में कमला बलान नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
दरभंगा में कमला बलान नदी का जलस्तर बढ़ने से कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के 11 पंचायत के सभी 7 गांव बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। बाढ़ से लगभग 10,000 की आबादी प्रभावित हुई है। सरकारी विद्यालयों में पानी घुसने से पठन पाठन प्रभावित हुआ है। वहीं खेतों में लगी फसल की भी बड़ी पैमाने पर क्षति हुई है। अंचलाधिकारी गोपाल पासवान ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के आवागमन के लिए 25 नाव उपलब्ध कराई गई है। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा।
मधुबनी जिले में कोसी, कमला बलान और भूतही बलान नदी की बाढ़ से लगभग 1,00,000 की आबादी प्रभावित है। शिवहर जिले में बागमती और लाल बकैया नदी में उफान के कारण कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सहरसा जिले में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से जगह जगह कटाव हो रहा है। कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
कोसी नदी में आई बाढ़ के कारण महिसी अंचल क्षेत्र के तटबंध के अंदर स्थित एना पंचायत की एना मंगरौनी RWD सड़क 15 फीट में क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे आसपास के गांवों का सड़क संपर्क भंग हो गया है। वहीं नवहट्टा की हाटी पंचायत के देवका से कटियाही जाने वाली सड़क और पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इधर तटबंध के अंदर बसे गांव में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। आकाशवाणी समाचार के लिए सहरसा से आरती कुमारी।
सुपौल जिले में भी बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि छातापुर प्रखंड में सुरसन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। इधर मधेपुरा जिले में कोसी नदी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट।
मधेपुरा जिले के आलमनगर प्रखंड क्षेत्र के किशनपुर, रतवारा, खापुर और गंगापुर पंचायत के कई गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अंचलाधिकारी दिव्या कुमारी ने बताया कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने बताया कि तीन जगहों पर नाव परिचालन की व्यवस्था की गई है। इधर चौसा प्रखंड के 5 पंचायतों में कोसी नदी का पानी फैल गया है। इससे लगभग 25,000 की आबादी प्रभावित हुई है। सड़कों पर पानी के आ जाने से आवागमन भी बाधित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए मधेपुरा से मनीष कुमार वर्ष।
भागलपुर जिले में भी कोसी और गंगा नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे 5 टी20 क्रिकेट मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत को 3-1 की अजेय बढ़त मिल गई है। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 152 रन बनाए। भारत ने यह लक्ष्य 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने 93 रन बनाए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। श्रृंखला का अंतिम मैच आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने 21 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। सीवान के सराय थाना क्षेत्र के पासवान चौक के पास अपराधियों ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव और राजसिंह कॉलेज के दर्शन विभाग के प्रोफेसर रवि प्रकाश सिन्हा को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने विधानसभा उपचुनावों के नतीजे को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है देश में इंडिया गठबंधन को 10 और एनडीए को 2 सीटें मिली। रूपौली में निर्दलीय शंकर सिंह जीते, जदयू पराजित। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बाद एनटीए का बदला रवैया, अब छुपाने लगी है सूचनाएं। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के जनगणना शुरू कराए जाने की खबर पर शीर्षक दिया है 4 साल बाद जनगणना की तैयारी में केंद्र, 2025 से राष्ट्रव्यापी हाउस लिस्टिंग संभव। प्रभात खबर ने लिखा है महाबोधि मंदिर परिसर के नीचे छिपे हैं पुरातात्विक अवशेष। आज अखबार की सुर्खी है नेपाल के प्रधानमंत्री बनने को ओली तैयार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 3-4 वर्ष में 8 करोड़ रोजगार सृजित होने से बेरोजगारी के मुद्दे पर दुष्प्रचार करने वालों को करारा जवाब मिला। राज्य में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसिलिंग 1 अगस्त से शुरू होगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, पश्चिम चंपारण, सीवान, रोहतास और समस्तीपुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई। और भारत ने चौथे टी20 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से पराजित कर सीरीज में अजेय बढ़त प्राप्त की। श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।